हो तो बहुत पुण्य हो तब सचमुच ईश्वर प्राप्ति की भूख लगे। जितना सुना उससे 100 गुना मनन करे और उससे 1000 गुना नित अध्यासन करे तब वो मन उस पर ब्रह्म परमात्मा में टिक जाता है। पृथ्वी का सारा धन मनुष्य के एक श्वास की कीमत की बराबरी नहीं कर सकता है। मनुष्य जीवन इतना कीमती है साहब, कहाँ खोपड़ी लगा रहे हो
आप? तो अपनी संवार ले भैया। ओम नारायण नारायण नारायण।
वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जिनको तत्व विचार है उनको सारे पदार्थ आत्म रूप हो जाते हैं, और जो पुरुष आत्म विचार से रहित है उसका जीवन वृथा हो जाता है।
देखो जी, एक होता है जगताकार विचार, ये मकान है, ये फूल है, ये मेरा है, जैसे सब लोग कर रहे हैं, तो अपना चेतन परमेश्वर चेतना इंद्रियों के द्वारा जगता विकार विचार करके जगत में राग और द्वेष सारे चीज़ों में घूमो, सारे वस्तु में घूमो, परिणाम तो है राग और द्वेष की सृष्टि बनती है। राग में फंसते हैं, द्वेष से उखलते रहते हैं, और राग की हुई वस्तु रहती नहीं है, जीव बेचारा तड़प के मर जाता है। द्वेष की हुई सारी वस्तुएं व्यक्ति मिटते नहीं हैं, हृदय में द्वेष बना रहता है। जिस किसी से द्वेष करो सब लोग मिटेंगे नहीं, सब विपरीत परिस्थिति हटेगी नहीं, द्वेष अंदर में जलाता रहेगा, राग बांधता रहेगा। इसलिए सब कुछ करने के बाद भी अपन लोग दुखी रहते हैं। दूसरा है कि चलो जगत आकार वृत्ति नहीं किया तो फिर अपने विषय में सोचो व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत सोचेंगे तो अपनी अच्छाइयाँ दिखेगी तो अहंकार आएगा, मैं 10-7 आदमी को अकेला ही काफ़ी हूँ जयराम जी के, और जब 7 आदमी में से एक का घुसाव लगता है, लपड़ाक लगती है तो बोलते हैं हवा निकल जाती, अरे के सब सब, तो फिर विषाद आएगा, तो या तो अहंकार आएगा या तो फिर अपने में ग्लानि आए, जय राम जी की। तो सारे जगत का सार ये हुआ कि आप जगत का कार्य वृत्ति उठाओगे तो राग और द्वेष में पच मारना है, अपने तरफ की वृत्ति लाओगे तो अहंकार या तो विषाद में डूब मारना। अगर आपने इसी वृत्ति को भगवताकार कर दी तो हृदय में भगवत भाव प्रकट होके आपको भगवत सुख, भगवत सामर्थ्य, भगवत आनंद से आनंदित करेगा और भगवान को आकर्षित करेगा। चौथा तरीका ये है कि आपने इसी वृत्ति के सूक्ष्मता सत्संग के द्वारा सुनी और आत्माकार विचार हुए, तो जिस आत्मसत्ता, आत्मा माना क्या, मैं, उस मैं, जिस मैं की सत्ता से ये बुरा है, ये अच्छा है, ये मैं हूँ और ये मेरी गलती है, ये जो दिखता है जिससे, उसको बोलते मैं। मैं, मैं का मूल स्वरूप है आत्मा। अगर उस आत्मा के ज्ञान को सुना, मनन किया और मनन करते करते गहरे शांत हुए तो उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये सबसे ऊंचा फल है। भगवताकार वृत्ति जगताकार और अहम आकार से बहुत ऊंची है, लेकिन भगवताकार वृत्ति से भी तत्व चिंतन आत्म चिंतन आखिरी है। भगवान के दर्शन होने के बाद भी अर्जुन को विषाद था, लेकिन अर्जुन को जब भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, हनुमान को राम जी ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तब उनकी आखिरी यात्रा हो गई। प्रचेताओं को भगवान शिव का स्तवन किया, शिव जी प्रकट हुए वर्षों की साधना से, शिव जी को बोला कि भगवान आदि नारायण के दर्शन हो जाए, आप ऐसा कोई सुक्त बताइए, नारायण सुक्त आदि पुरुष सुक्त की उपासना की। भगवान नारायण प्रकट हुए, वरदान मांगो, नारायण ने कहा तो वरदान मांग लो, बोले प्रभु हमारा किस में भला है हमको पता नहीं है, जिसमें आप हमारा हित समझें वो ही दीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा जाओ तुम्हें संत प्राप्त हो। लो शिव जी की कृपा से तपस्या से शिव जी मिले, शिव जी की कृपा से विष्णु मिले। अब वो विष्णु जी को बोलते कि हमारा हित किस में है, आप ही वही चीज करिए। तो शिव जी भगवान नारायण कहते हैं कि जाओ तुम्हें संत प्राप्त होंगे और सत्संग प्राप्त होगा। तो संत के द्वारा जब सत्संग मिला आत्मचिंतन का, तब प्रचेताओं को राग द्वेष दूर हो गया। नहीं तो शिव जी के दर्शन के बाद भी प्रचेताओं को किसी ने थोड़ा सताया तो क्रोध आ गया। अमुक परिस्थिति नारायण के दर्शन के बाद भी कुछ राग हुआ कि ऐसी परिस्थिति बनी रही। लेकिन जब तत्व ज्ञान मिला और उसका मनन करके अपनी मैं को जाना, तो फिर कोई आओ चाहे जाओ, चाहे कोई बनो चाहे बिगड़ो, युद्ध करो, फिर भी हृदय में राग और द्वेष नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने महाभारत की युद्ध का सूत्र संभाला, सूत्रधार था, फिर भी मेरे हृदय में पांडवों के लिए राग न रहा हो तो, कौरों के लिए द्वेष न रहा हो तो, ये मृतक बालक मेरे समता की परीक्षार्थ जीवित हो जाए। वो मृतक बालक जीवित हो गया, उसी का नाम परीक्षित पड़ा, जिसने बड़ा अच्छा राज चलाया था। और अंत में वो परीक्षित राजा 7 दिन वो तत्व ज्ञान सुखदेव जी से सुनकर मुक्त हो गए थे। और इसी परीक्षित की और सुखदेव जी मुनि के भेंट समाज को भगवत कथा का प्रसाद मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्व चिंतन जब बहुत पुण्य होते, भगवान की बहुत ऊंची कृपा होती, अपनी बहुत सजगता होती, तो तत्व ज्ञान तत्व चिंतन मिलता। तो ध्यान में एकाग्रता में और नित्यध्यासन में क्या फर्क है कि एकाग्रता में मन एक विषय में ठहरेगा, एक जगह ठहरेगा। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक देश में आपका चित्त लग जाए उसको एकाग्रता बोलते हैं। एकाग्रता से आप सृष्टि को चकित कर दे ऐसा सामर्थ्य ला सकते हैं। मन चाहा देवी देवता का आमंत्रण करके प्रकट कर सकते हैं। मन चाहा भौतिकता में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये गुलाब के फूल गुलाबी हैं, लेकिन आप एकाग्रता के बल से इनको सफ़ेद कर सकते, सफ़ेद को गुलाबी कर सकते। एकाग्रता के बल से आप अलग अलग उपासना है, पृथ्वी तत्व की उपासना करके एकाग्रता से आप पृथ्वी में गढ़ जाए, यहाँ तो आप पृथ्वी में गाड़ दिए गए, कलकत्ते में निकल जाए, पानी में कूद पड़े और आप पानी हो जाए, और बाद में जब चाहें तब आप मछली बनकर पानी में सैर करें। ये सब एकाग्रता में अष्ट सिद्धि नव निधि पाने की योग्यता है। फिर कितने अंश में आपकी एकाग्रता और किस विषय में, ये एकाग्रता का फल है। फिर आप जिस विषय में अपनी एकाग्रता लगाए सफल हो जाएं। जैसे राम जी की गजब की एकाग्रता थी, तो अगस्त ऋषि ने राम जी को आदित्य हृदय के मंत्र सुनाया और बोले 3 बार जपने वाले को युद्ध में सफलता मिलती है। राम जी रावण मायावी है, तो अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय की साधना का मंत्र बता दिया राम जी, और राम जी एकाग्र थे, 3 बार वो मंत्र उच्चारण किया, सफलता। अभी भी किसी को कोई तकलीफ हो और जब एकाग्र चेतो और 3 बार जप करके फिर उस तकलीफ से युद्ध करे तो विजय हो जाए। तो एकाग्रता होती तो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। एकाग्रता एक आध्यात्मिक जगत का एक बहुत बहुमूल्य धन है, हथियार है। लेकिन एकाग्रता में और नित्यध्यासन में क्या फर्क है? एकाग्रता होगी तो आपका मन उस नित्य तत्व से सामर्थ्य लाएगा, और नित्यध्यासन है तो तत्व ज्ञान सुनकर उसका मनन करते करते जो नित्य तत्व है उसमें मन एकाकार होगा, तो नित्यध्यासन प्रभु को प्रकट कर देगा। एकाग्रता आपके मन चाही परिस्थितियां खड़ी कर देगी। मन चाही परिस्थितियां खड़ी हो गई, जो पैदा हुई वो बदलेगी, मरेगी, मिटेगी, लेकिन वो जो पैदा नहीं था, पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा, उसको जानना ये नित्यध्यासन का काम है। तो नित्याध्यासन नित्य वस्तु का बोध करा दे। नित्य एक परमात्मा है, आत्मा है, तो नित्य वस्तु का साक्षात्कार नित्याध्यासन से होता है। अभी सुनते तो हैं लेकिन फिर उस विचार को मनन नहीं करते। जितना सुना उससे 100 गुना मनन करे और उससे 1000 गुना नित्याध्यासन करे, तब वो मन उस पर ब्रह्म परमात्मा में टिक जाता है, बैठ जाता है, एकाकार हो जाता है। इसी को बोलते साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के लिए मैं मेरा तू तेरे के प्रपंच से थोड़ा हटकर अभ्यास करना पड़ता है। तो जगत में जितना राग द्वेष में समय देते उसका आधा हिस्सा भी अगर साक्षात्कार में समय दे तो पृथ्वी 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। नित्याध्यासन का इतना बड़ा भारी प्रभाव होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चैव, उसका कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, वसुंधरा अपने को पुण्यमय माने। पृथ्वी का 1,00,000वां हिस्सा व्यक्ति भी अगर आत्मचिंतन कर ले, नित्याध्यासन कर ले, तो पृथ्वी का रंग बदल जाएगा। मतलब रंग क्या बदले, अभी जो तू तेरा मैं मेरा राग द्वेष है उतना नहीं रहेगा, 1,00,000वां हिस्सा, 1,00,000वां हिस्सा। ओ हो, 1,00,000 में 1 आदमी, इधर 30,00,000 है तो 30 ब्रह्मवेता हो तो क्या हाल हो जाए। अहमदाबाद में 30 कबीर हो तो कैसा हाल है, जयराम जी की। एक होता है तभी भी कितने लोगों का मंगल होता है, तो 1,00,000 में 1 आदमी हो तो कल्याण हो। तो नित्याध्यासन का फल है साक्षात्कार। साक्षात्कार किसको बोलते हैं, भगवान के दर्शन को बोलते हैं? नहीं, भगवान के दर्शन से हृदय में रस आता है, वरदान मिलता है, लेकिन भगवान और अपने बीच का अज्ञान नहीं मिटता है। भगवान का तो दर्शन, शाकुनि ने भी दर्शन किया था, दूसरे लोगों ने भी दर्शन किया था। तो साक्षात्कार का अर्थ है कि आप और भगवान के बीच जो अज्ञता है वो मिटाने की व्यवस्था, आप और भगवान के बीच की दूरी, आप और भगवान के बीच का अज्ञान मिटाने की व्यवस्था को बोलते हैं श्रवण मनन नित्याध्यासन। वेदांत का श्रवण मनन और नित्याध्यासन। तो एकाग्रता के बल से 60,000 वर्ष तपस्या की और बड़ी सिद्धियां पाई, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, फिर भी दुख तो नहीं मरा, अमर होने का वरदान मिला। रावण में वर्षों की एकाग्रता थी और बहुत शक्तियां थी, फिर भी काम बाकी रह गया। हिरण्यकश्यपु की वर्षों की एकाग्रता और खूब मिला लेकिन फिर भी काम बाकी। लेकिन सुखदेव जी महाराज की कृपा से 7 दिन सत्संग सुना और उसी के साथ नित्याध्यासन करते रहे तो परीक्षित ऐसी जगह पहुंचे कि रावण भी नन्ना और हिरण्यकश्यपु भी नन्ना। तो आपका लक्ष्य पहले गुरु बताएं कि वो लक्ष्य ऊंचा बनाओ, फिर थोड़े समय में जाने का तरकीब बता दो और उसका महात्म्य समझो। अभी क्या है कि भूख नहीं है, महात्म्य नहीं समझते, फिर भी चलो आए, थोड़ा सुना अच्छा लगा, फिर लगी लाइन के मेरे जरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा सिर खपाने वालों की लाइन चालू हो जाए। लेकिन ये तो ऐसी बात बता रहा हूँ कि आपको तो कोई प्रॉब्लम, तो क्या आप जहाँ जाओ वहाँ प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये ऐसी चीज़ बता रहे हैं। हाँ जी,
हे राम जी, जो एक सांस भी आत्म विचार से रहित होती है तो वह वृथा जाती है।
एक श्वास आत्म विचार से रहित है तो वृथा है, उसे कुछ फायदा नहीं मिला। इधर तो सभी श्वास जा रही है और समझ रहे हैं अपने बड़े चतुर हैं, हम अकेले 7 जोड़ी को भारी हैं, तू 7,000 जोड़ी को भारी हो जाए तो क्या जग मार लेगा। कवि काग हो गए, उन्होंने कविता गाई अपने चित्त की व्यथा। हिमालय थी में पड़ तू मुक्यू पण झील नारा कोई ना मळ्या रे। दादरो बनी खिला खाता, निसरणी बनी में जग मां उभा, पण चढ़ नारा कोई ना मळ्या। फूलड़ा बनी में माथा का पाणा, पानी में बफाणा, रूना पुमड़े पुराणा, अत्तर बनी ने पहुंचा पण सुंगनारा कोई ना मळ्या रे। कहे कवि काग हिमालय पतितो ना कारणे में हिमालय अर्थात जहाँ परम शांति तत्व की वो छोड़ी और जग में उभा, पर चालनारा कोई ना मळ्या रे। अन्न बनी आग्यू मा ओराणा, जन जननी थाली पीरसाणा, लेकिन जमनारा ना मळ्या रे। जितना सच्चाई से सेवा करेंगे उतना तत्व ज्ञान की भूख होगी, जितना जगत में सच्चाई से व्यवहार करेंगे उतना ईश्वर प्राप्ति की छटपटाहट होगी। हम रात रात नहीं सोते थे, रोते थे कि वो ईश्वर कैसे मिले, कैसा होगा, तू कैसे प्रकट, रात रात रोते थे। सारी रात तो नहीं रोते थे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे। राम तीर्थ लाहौर कॉलेज के प्रोफेसर थे, लेकिन ये नौकर होके मर जाने से क्या होता है, नौकरी वोकरी को लात मार के एकांत में चले गए। जब घर में भी रहते थे तो रात को उठ के बैठ जाते थे कि प्रभु तू ध्रुव को मिला, पहलाज को मिला, हमारे दिल में और हमारे को तू कब मिलेगा, हमारी प्यास नहीं जगते, हम कैसे अभागे हैं। तो ऐसे करके रोते थे, रोते 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 आंसू सारते सारते उनका तकिया, उनकी पत्नी उठाती कि तकिया गीला मिलता है, मेरे पति से क्या व्यथा है। व्यथा क्या है, सब मिटाने की व्यथा है। तो भगवान के लिए तड़प भी पैदा नहीं होती, कितना दुर्भाग्य। जो चीज़ें छोड़ के जानी उसके लिए लगे हैं, जिस शरीर को जलाना है उसकी सुविधा के लिए सारी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो नित्य था है और रहेगा उसको पहचाने बिना वृथा जीवन जा रहा है। और एक दो का नहीं है, लगभग सभी, कोई कोई पुण्य आत्मा महात्मा, कोई सज्जन, कोई व्यक्ति। समझो आपको रोज का 3 लाख रुपए कमाई है तो क्या हो जाएगा। अमेरिका में यूरोप में ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्रियल है, ऐसे कोई बड़े लोग हैं, 10 करोड़ रुपया हो गया, 12 करोड़ रुपया साल में कमाए तो रोज का 3 लाख हो गया, और क्या हो गया है। 12 करोड़ नहीं कमाने वाले हैं क्या, साल में 100-100 करोड़ कमाते हैं तो क्या हो गया। रोज का 50 लाख रुपया कमा लिया तो क्या हो जाएगा। ऐसे 8 आदमी के नाम बताए इतिहास में कि वो ऐसे ऐसे कमाते थे, कितना उनके पास पैसा हो, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, और 25 साल के बाद कोई दिवालिया होके मरा है, तो कोई को पैरालाइज हो गया है, कोई जेल में पड़ा है, 25 ही 25 कंगालियत में गए, कोई जिंदा है, कोई मर गए बुरी हालत में। तो अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, वैभव नहीं वह शाश्वत, धन शाश्वत नहीं, नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मृत्यु के नजीक जा रहे। इस बात में किसी को शंका हो तो पूछो, शरीर अनित्य है कि नहीं है, और धन शाश्वत नहीं है, और रोज मौत के तरफ आगे बढ़ रहे, फिर भी परमात्मा प्राप्ति की प्यास नहीं जगती, आयुष्य बीती जा रही, अभी इतना काम पूरा करो, अभी ये पूरा करो, इतना पूरा करो, लेकिन मेरे मूर्ख मन कब तेरा गला दबा दे आके मौत के राव, क्या पता है। भुवन नाम का लड़का गया उघराणी करने, माधवदास महाराज का, ये संवत 1700 की घटित घटना है, सूरत में स्वामी माधवदास का आश्रम था, वो आश्रम के लिए सीधा मंगाते थे, तो उसी देकर महीने महीने का जो पैसा होता था, वो भुवन नाम का लड़का करियाने वाला, उसके बाप ने जो चिट्ठा दिया वो ले आया, बोले महाराज हमारे पैसे। महाराज ने कहा भाई ये तेल के डिब्बे जो लिखे हो तो अगले महीने के हैं, वो तो पैसे हो गए, बाकी का तुम चेक करो कि डबल लिखा है। तो महाराज अंधेरा हो गया, बोले दिया जला दिया है मंदिर बैठ के। तो उसने चेक कर लिया, फिर एक किताब पढ़ा था, उठाया किताब था समर्थ रामदास का दास बोध, और ऊपर लिखा था गाफिल अजू सोचत नहीं मिर्था जन्म गवाए तेल घटा बाती बुझी अंत बहुत पछताए। तो बोले महाराज तेल तो घटा नहीं, अभी तो सरसों का तेल पड़ा है, घटेगा तो मैं डब्बा भेज दूंगा, बाती बुझेगी तो फिर डाल देंगे, इसमें किताब मेल क्यों लिखवाया, बच्चा था। तो माधव दास ने कहा कि ये तेल नहीं बेटा, श्वास का तेल घटेगा तो जीवन की बाती बुझ जाएगी, समर्थ रामदास का वचन। और जो कुछ करते कमाते आखिर में वृथा हो जाता है। गाफिल जो सोचत नहीं वृथा जन्म गवाए तेल घटा बाती बुझी। बाबा बाबा पावा, फिर जितना खोपड़ी लगाई ताल पड़ गई, वो उस घर के उस शरीर की हड्डियां भी आपके घर में नहीं रखेंगे, सावधान हो जाओ। ये शरीर की हड्डियां अपने घर में नहीं रहेगी, बोले अपशुकन है, वो दिन आने वाला है। वर्धन्ते भयम् वर्धते भयम्, भय के दिन नजीक आ रहे, मृत्यु सबसे खतरनाक भय का दिवस। तेल घटा बाती बुझी अंत बहुत पछताए, जब ये शरीर छोड़ना पड़ता है जीव बहुत पश्चाताप करता है। इनकम टैक्स वाले 2-5 करोड़ रुपए ले जाते तो सेठ की क्या हालत हो जाती, हालांकि विदेश में 40 करोड़ पड़े भी हैं वो जानता है, यहाँ छापा पड़ा 5 करोड़ ही गए हैं, अभी 10 करोड़ का आए, 15 करोड़ का अपना सोसाइटी कॉलोनी है उसको पता भी है, फिर भी 5 करोड़ जाते तो कितना, सभी जाएगा, विदेश वाला भी जाएगा, इधर वाला भी जाएगा और शरीर भी जाएगा, तो कितना हालत बुरी होती होगी। इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो कैसा सेठों का हाल होता है, उससे कई गुना बुरा हाल होता है जीव आत्मा का। आपका किसी का सब कुछ कोई छीन ले तो क्या हाल हो, उससे भी ज़्यादा मौत छीन लेगी। सब छीनने वाले आपकी लंगोटी नहीं छीनते, मौत तो लंगोटी क्या शरीर भी छीन लेती, ऐसी मौत आने वाली, और किसी के रोकने से रुकेगी भी नहीं। तो फिर महाराज उससे बचने का उपाय, बोले जहाँ मौत की दाल नहीं गलती उस परमेश्वर आत्मा में आ जाओ। तो बाबा मैं इधर रहूँ, बोले इधर तो सूरत में है मेरा आश्रम है तेरा घर, कुटुम्बी रहने नहीं देंगे। सिद्धपुर का मेला लगता है कार्तिक का, वहाँ चला जा। भुवन पहुँच गया, वहाँ साधु संतों का संपर्क हुआ, एक कोई संत की शरण पड़ा, वो आबू के साधु थे, गुफा में ले जाकर उसको प्राणायाम सिखाया ध्यान सिखाया, जरा कृपा दृष्टि हुई बुद्धि विकसित हुई प्यास लगी तत्व ज्ञान सुनाया, उसका मनन नित ध्यासन करते करते भुवन को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। लेकिन बदले में माधवदास महाराज को कुर्बानियों पे कुर्बानियां देनी पड़ी, उसके बाप ने माँ ने समाज ने कितनी बदनामी की, पुलिस भेजी, क्या क्या किया, वो सब महापुरुष ने सह लिया। वो तो बहुत पुण्य हो तब सचमुच ईश्वर प्राप्ति की भूख लगे। तो बहुत पुण्य कैसे हो कि बहुत सत्कर्म करे, जप ध्यान करे, बहुत समय का सदुपयोग करे तो पुण्य बढ़ेगा तो प्यास बढ़ेगी, अथवा तो ईश्वर प्राप्ति की प्यास बढ़े तो भी पुण्य बढ़ जाए, और पुण्य बढ़े तो भी प्यास बढ़ जाए, और जितना सच्चाई से व्यवहार करेगा उतनी प्यास बढ़ेगी, जितना कपटी आदमी होगा उतना प्यास नहीं रहेगी। एक थप्पड़ और मलमल्ला, एक थप्पड़ और रामकृष्ण ने कहा कि वकील को दलाल को और डॉक्टर को ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वकील जानबूझ के झूठ बोलता है, डॉक्टर जानबूझ के हाड़ मांस मज्जा मल मूत्र में अपना चित्र लगाता और दलाल जान बच के झूठ बोले उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छी प्रैक्टिस करने वाले नाग महाशय ने सारी डॉक्टरी का सामान फेंक दिया और लग गए और ईश्वर प्राप्त हो गए। ऐसे कोई विरले होते तो भुवन को ईश्वर प्राप्ति हो गई। फिर माधवदास के पास गए, माँ बाप को बुलाया, पिताजी आए घर पर, महाराज माफ़ करना हमने आपको बहुत सताया, पुलिस भेजी फलाना की, अब बेटा तुम्हारा क्या है ईश्वर का है, ले जाओ घर। भले अब वो घर अब कहाँ, जंगल का शेर पिंजरे में कहाँ रहेगा। फिर तो बहुत उसके द्वारा लोगों का मंगल हुआ भुवन के द्वारा। भुवन को तो पता भी नहीं था कि संवत 1700 है, 2003 में आसाराम बापू मेरी सराहना करेंगे जयराम जी की। लेकिन वो सत्य में टिकना तत्व चिंतन, तो फिर उसकी सराहना करने से अपने को लाभ ही होता है, घाटा क्या है। नारायण हरि। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी,
हे राम जी, मनुष्य की ऐसी एक सांस भी मनुष्य की ऐसी एक सांस के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं।
सारी सृष्टि का धन मनुष्य की इतना कीमती टाइम है कि एक श्वास के समान पृथ्वी का सारा धन कोई माना नहीं रखता। इतना कीमती समय है, इसी श्वास का सदुपयोग करके कई सृष्टियां पैदा हो के नष्ट हो जाती है। जिस परमात्मा से उससे आप मिल सकते, ऐसी योग्यता मनुष्य में। पृथ्वी का सारा धन मनुष्य के एक श्वास की कीमत की बराबरी नहीं कर सकता है। मनुष्य जीवन इतना कीमती है साहब, कहाँ खोपड़ी लगा रहे हो।
यदि एक सांस भी निष्फल जाए तो फिर मांगे नहीं मिलती। ऐसी सांस को जो वृथा गंवाते हैं उनको तुम पशु जानो। हे राम, आयुष्य बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है।
बचपन कहाँ चला गया, जवानी और शादी के दिन कैसे बीत गए, आयुष्य नाश हो रही। बिजली के चमकारे जैसी तो जिंदगी है। बिजली के चमकारे में सुई में धागा परो लो तो पोलो, ऐसे अपना काम बना लो तो बना लो, नहीं तो फिर भैंसे बनो, मेढक बनो, कलकत्ता की मछली बनोगे फिर बंगाली खाएंगे, फिर बंगाली के पेट में जाके बंगाली के बच्चे बनो, फिर वो ही आके हावड़ा में काम करेंगे, फिर आप ही फिर कोई सेठ बनेगा हावड़ा का तो आप लेबर हो जाएंगे, लेबर के बच्चे कहे जाएंगे, खा पी के लेबर बनेंगे। ऐसा भी नहीं जाने कितनी बार हो गया होगा। आप तो अपनी संवार ले भैया। हाँ जी, पूरा करो।
हे राम जी, ऐसा शरीर पाकर भी यदि आत्मपद न पाया तो फिर कब पाओगे। जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्ष आदि के जन्मों को पावेगा।
हाँ, वृक्ष बन जाएगा। जरूरी नहीं कि मछली बने और फिर लेबर बन जाए, लेबर को भी थोड़ी छूट छाट होती, लेकिन वृक्ष को बेचारे को छूट छाट कहाँ होती। वृक्ष चाहे कि हवाई जहाज में कलकत्ते से बम्बई जाऊँ तो जाएगा क्या। जयराम जी, वृक्ष की योनि भी आ जाती है। नल कुबर वृक्ष बन गए थे, बंदर वाले भी वृक्ष बन जाते, तो मनुष्य तो उससे नीचे ही होनी। मनुष्यों से गंधर्वों में 8 गुना बल होता है, प्रकट भी हो जाते, अदृश्य भी हो जाते। पृथ्वी लोक पे मनुष्य सर्वोपरि, लेकिन गंधर्व 8 गुना ज्यादा बल और भोग सामग्री, अदृश्य होने की शक्ति, संकल्प से उनका विमान उड़ान भरे, संकल्प से वो प्रकट हो जाए, अदृश्य हो जाए। लालजी महाराज से मिले थे 5 गंधर्व साधना काल में,
बोले इधर क्यों बैठा है, पकड़ लो इसको। तो पांचों के पांच बड़े भयंकर पड़ी हुई रॉड, तो वो इतना बड़ा पंजा कि वो लालजी महाराज बोलते मैं तो उनको जैसे नींबू निचोड़े या कोई चूहा पकड़ ले तो उनका पंजा इतना पड़ शरीर बड़ा कि मेरा शरीर उनके आगे एक चूहे जैसा लगे, इतने बड़े हो गए। तो मैं तो घबरा गया, तो आंखों में ची राम 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 बैसे राम 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 मनु भाई तो फपड़े आके। सरल आदमी सच्चाई से बोलते तो मजा आ गया था। मनु भाई तो फपड़े आके भाई राम 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 और दो कलाक बोलते। फिर धीरे से आंख खोली तो देखा के करण कुंडल पांचों के पांच बड़े दिव्य देखे। तो मेरे देखते देखते वो मेरे है वो साबरमती है अपनी, जो साबरमती जिस तट पे अपन बैठे आगे वरसोड़ा गांव आता है, तो उसके भी साबरमती के ये जमीन जो है ना कठोर है, तो उसमें खोद के छोटी सी गुफा बना के वो भाई साहब लालजी महाराज अनुष्ठान कर रहे थे। तो रात को 2 बजे जग के कुछ कर रहे थे, तो वो 5 आदमी काले कलूट आए, तो फिर उनको देख के सोचा कि कौन है। तो इतने में वो भयंकर हो गए बड़े, और बोले पकड़ लो। तो इतने बड़े हो गए कि वो हम तो के चूहे जैसे लगे। तो फिर राम 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 मनु भाई के राम 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 आप करो तो राम 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 राम। अभी वो गंधर्व आया नहीं ना, नहीं तो आवे तो अभी सब लोग चालू हो जाओ। थोड़ी सी बिजली चमकती तो यूं हो जाते, तो बड़े गंधर्व एक भी आ जाए तो काफी है। राम 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 सब भाग जाए, ऐसा भयंकर रूप राम 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 राम। फिर धीरे से खोला तो 5ों के बाद फिर वो भेखड़ में 1 2 3 जैसे ये दीवार है, आप इधर खड़े और आपके सामने इसी दीवार में कोई गायब होता जाए तो आश्चर्य होगा। तो गायब होते होते 4 तो अंदर घुस गए, 5वें का 1 पैर बाहर 1 हाथ बाहर और गर्दन यूं बाहर। बोले घबराना नहीं, हम गंधर्व थे तेरी परीक्षा लेने आए। बोले यार तेरे कितना तो पपड़ा दिया, आप बोलते घबराना नहीं। तो कितने कितने पाप पड़ वेले महापुरुषों ने भक्ति करते कहा थे। आखिर वो तत्व ज्ञान में आए कि बधु एक अच्छे बधे मारो राम छे बधे एक अच्छे। तो ये साधनाएं करके गंधर्व अंदर आए वो रास्ते भी हैं, लेकिन सीधा तत्व चिंतन करो तो ये कोई आए में आए कोई जरूरत नहीं। तत्व चिंतन ऐसा एकदम ऊंचा मार सीधा मार, ये भी अच्छा है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन करो बस मिर्था जन्म ना जाए।